समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सभी श्रोताओं को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। नमस्कार प्रमोद।
नमस्कार मनोज, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज इन द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग फॉर यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेरिन वी गिव द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 6th of March 2025।
तो नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड जाएंगे। वे मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास का दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। श्री मोदी ट्रैक और बाइक रैली को रवाना करेंगे और हरसिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है। हजारों श्रद्धालु गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के देवी देवताओं के शीतकालीन प्रवास स्थलों के दर्शन कर चुके हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ ही गृह प्रवास पर्यटन व्यापार में तेजी लाना है।
That's right. The government has given approval for the development of Son Prayag to Kedarnath Ropeway with a length of 12.9 kilometers. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the total cost of the project will be over 4,000 crore rupees. Mr. Vaishnav informed that about 12.4 kilometers of the Hemkund Sahib Ropeway that is to be developed at a cost of 2,730 crore rupees. Mr. Vaishnav also said the government has taken decisions for livestock health and disease prevention with a cost of 3,880 crore rupees. He said the vaccination program will be a major thrust area of the program. He said this will help the farmers. He said the good quality and affordable generic veterinary medicines will be provided through Pashu Aushadhi.
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है, जो भारत के हितों के अनुकूल है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव अपेक्षित था और ये कई मायनों में भारत के हित में है। विदेश मंत्री कल शाम लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में भारत का उदय और विश्व में इसकी भूमिका विषय पर एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ब्रिटेन और आयरलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था, ऊर्जा, तकनीक और कनेक्टिविटी पहलुओं का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति और उनके प्रशासन की कई प्राथमिकताएं भारत के लिए आशाजनक हैं। टैरिफ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए इस समय वाशिंगटन में है।
Removing Article 371, then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. Part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved.
Videsh Mantri ने चीन के बारे में कहा कि अक्टूबर 2024 से कुछ सकारात्मक गतिविधियां हुई हैं, जिसमें तिब्बत में कैलाश पर्वत के तीर्थयात्रा मार्ग का खुलना भी शामिल है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 24.4% से दोगुना होकर 48.8% हो गया है। बजट के बाद लोगों में निवेश के विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के 10 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जबकि 10 और कॉलेजों के लिए योजनाओं पर काम चल रहा है. उन्होंने देश के युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने के सरकार के मिशन का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भारतीय प्रतिभा वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव डाल सके. डॉक्टर मांडविया ने रोजगार पहलों की सफलता का उल्लेख करते हुए आंकड़े प्रस्तुत किए जिसमें खुलासा किया गया है कि 2014-24 के बीच 17.1 करोड़ नौकरियां सृजित की गईं, जिनमें पिछले वर्ष ही 4.6 करोड़ नौकरियां शामिल हैं. उन्होंने 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा का भी उल्लेख किया. श्री मांडविया ने कहा कि लोगों में निवेश करना केवल एक आर्थिक निर्णय ही नहीं है, बल्कि एक शिक्षित, स्वस्थ और सशक्त समाज के लिए सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता भी है.
Prime Minister Narendra Modi will visit Uttarakhand today. He will flag off a trek and bike rally and address the gathering at a public function in Harsil. Mr. Modi will also perform puja and darshan at the winter seat of the Ma Ganga in Mukwa. The Uttarakhand government has initiated a winter tourism program this year. Thousands of devotees have already visited the winter seats of Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath, and the program is aimed to promote religious tourism and boost the local economy, homestays, tourism businesses, among others. The US has paused intelligence sharing with Ukraine alongside a military aid freeze, part of a pressure campaign to force its government to cooperate with the White House's plans to end the country's war with Russia. The CIA Director John Ratcliffe and the National Security Advisor Michael Waltz both confirmed the pause in intelligence support but suggested it could be short-lived if Ukraine quickly came back to the negotiating table.
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से कहा है कि टैरिफ वृद्धि को रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदम सही नहीं थे. कनाडा और मैक्सिको से अमरीका में प्रवेश करने वाले सामानों पर 25% टैरिफ 4 मार्च को निर्धारित समय पर लागू हो गया. अमरीका द्वारा चीन से आयात पर 20% टैरिफ लगाया गया. ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के अमेरिका में प्रवेश के लिए कनाडा और मैक्सिको को दोषी ठहराया. उन्होंने चीन को इसके स्रोत के रूप में रोकने में विफल रहने के लिए उसकी आलोचना की. उन्होंने श्री ट्रूडो पर सत्ता में बने रहने के लिए टैरिफ के मुद्दे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.
एयाल जमीर हैज टेकन ओवर एज द 24th चीफ ऑफ द इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF. He has warned that Israel's multi-front conflict would be ongoing and vowed to strike its enemies with tremendous force. Zamir, 59, assumed his new role during a change of command ceremony at the Kiryat military base in Tel Aviv, following government approval of his appointment on the February 16th. He succeeded Herzi Halevi, who resigned in January after admitting his failure to defend Israelis during the Hamas-led attack on October 7, 2023. Zamir, a former DG of the Defense Ministry, joined the military in 1985 and became a tank commander the following year. Zamir takes office at a sensitive time as the future of a fragile ceasefire with Hamas, which took effect on Jan 19th, remains uncertain while violence escalates amid an ongoing large-scale military campaign in the northern occupied West Bank and rising tensions with Iran, which Israel considers its arch foe. And now moving on to sports news. In the ICC Champions Trophy 2025, New Zealand set up the summit clash with India after beating South Africa by 50 runs in the second semi-final at Gaddafi Stadium in Lahore last night. Chasing the highest ever target of 363 runs in the tournament's history set by New Zealand, South Africa managed to score 312 for 9 in the stipulated 50 overs. For South Africa, David Miller remained unbeaten with 100 runs, followed by Rassi van der Dusen with 69 runs and skipper Themba Bavuma with 56 runs. For New Zealand, skipper Mitchell Santner scalped 3 wickets, while Matt Hendry and Glenn Phillips took 2 wickets each. On Tuesday, India stormed into the final of the tournament, beating Australia by 4 wickets in the first semi-final at Dubai.
अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का.
जी, आई विल स्टार्ट विद चेन्नई. मनोज
जी,
एज पार्ट ऑफ द 54th नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेशंस, द जॉइंट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स वाज कैरिड आउट बाय CVRDE फायर फाइटिंग पर्सनल अलोंग विद द इंडियन एयरफोर्स. Heavy Vehicles Factory, Ordnance Clothing Factory and Ordnance Depot Firefighting Team. The participants keenly witnessed the live show and the safety methods required to be followed during the unforeseen period, but also well explained. J. Rajesh Kumar, Outstanding Scientist and Director, CVRD, along with Dr. B. Balamurugan, Outstanding Scientist and Program Director, graced the National Safety Week celebration and addressed the gathering. Still with Chennai, Tirunelveli District Collector Dr. R. Sukumar visited houses of school dropouts from Radhapuram Taluk to know the reason for not attending school. The parents of the students assured the collector that they would go to school starting Tuesday. ये बड़ा ही अच्छा न्यूज़ है मनोज
जी
कि कलेक्टर जाके पूछ रहे हैं कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं आए
बिल्कुल बिल्कुल
The collector instructed the SSA staff at the school to ensure that the students resume their studies. He also visited the schools and checked the registers.
अब दिल्ली की खबर
जी
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में शिक्षकों और शिक्षाविदों के साथ कल संवाद कर शहर की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव मांगे इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये चर्चा काफी सकारात्मक और सार्थक रही उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार राजधानी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देश में सबसे बेहतर शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है दिल्ली की एक और खबर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 23 वर्षीय एक महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली में पहचान बदलकर रह रही थी पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की रहने वाली है और वो झारखंड के सोनुआ थाने में दर्ज एक मामले में वांछित थी पुलिस के अनुसार आरोपी ने 5 साल तक कठोर और गहन प्रशिक्षण लिया है और 2018 2019 और 2020 में झारखंड पुलिस के साथ 3 मुठभेड़ों में शामिल रही है पुलिस ने बताया कि आरोपी पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी असली पहचान छिपाकर दिल्ली में रह रही थी और शहर में घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी आरोपी पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है
Now moving on to Bangalore, the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, provided a platform for a dialogue on women's mental health in Bengaluru yesterday. Dr. R. N. Murthy Foundation for Mental Health and Neurosciences supported the event. Over 350 university students engaged in slam poetry, poster making and interactive theatre. Meaningful discussions were held where experiences were shared on mental health of women and challenges faced in today's world. All posters were displayed, allowing attendees to engage with diverse artistic interpretations of mental health and gender issues. The event concluded with an interactive theatre performance where audience members, referred to as actors, were invited to step into roles and act out alternative responses to real-life challenges. This participatory approach encouraged empathy, discussion and deeper understanding by allowing attendees to actively engage with the themes presented. The event encouraged open conversations, creative expressions and collective action towards gender inclusivity and mental well-being.
जी अब महाराष्ट्र की खबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बुधवार को बताया कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर पर प्रतिबंध होने के कारण राज्य में पोस्ट पेड इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए जाएंगे वे विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली की खपत पर 10% की छूट मिलेगी उन्होंने ये भी कहा कि पहले सभी फीडरों और ट्रांसफार्मरों पर ये पोस्ट पेड इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए जाएंगे और फिर उपभोक्ताओं के लिए ये मीटर लगाए जाएंगे श्री फडणवीस ने बताया कि इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा महाराष्ट्र की एक और खबर महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने बुधवार को कहा कि राज्य में बाघों की संख्या 2000 में दर्ज 101 से बढ़कर इस साल 444 हो गई है महाराष्ट्र में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में श्री नाइक ने यह भी बताया कि सरकार ने बाघों के आवास के पास के गांवों में सौर बाड़ लगाने के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृति दी है वे भंडारा के पास एक वन्य जीव अभयारण्य में मानव पशु संघर्ष के मुद्दे पर राज्य विधानसभा में एक बहस का जवाब दे रहे थे जहां इस साल बाघ के हमलों में इस क्षेत्र में 2 लोग मारे गए हैं सदस्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने पर सहमत हुए।
Still continuing with Bengaluru news, the Karnataka government has extended the deadline for affixing high security registration plates HSRP on vehicles till the 31st of March, marking the 7th extension of the deadline. As of 28th February, 58.12 lakh applications were submitted, of which 57.2 lakhs were successfully proceeded. This was informed by Karnataka Transport Minister Ramalinga Reddy to the Legislative Council in response to a query from the MLC. So far, 24 lakh vehicles have affixed HSRP in Bengaluru, followed by 4 lakh in Mysuru, 2.7 lakh in Dakshina Kannada, 2.6 lakh in Belagavi, 1.4 lakh in Dharwad and 2 lakh in Shivamoga. Yadgir has the lowest compliance with only 19,000 vehicles affixing HSRP. Non-compliance will attract a fine of 500 rupees for the first offence and 1,000 rupees for subsequent violations under the Motor Vehicles Act.
जी, अब पश्चिम बंगाल कोलकाता की खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी इस महीने लंदन का दौरा करेंगी। वे 21 मार्च को अपनी यात्रा शुरू करेंगी। सुश्री ममता बैनर्जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देंगी और उद्योग पर बैठकें करेंगी। वे 29 मार्च को कोलकाता लौटेंगी।
एंड नाउ मूविंग ऑन टू न्यूज फ्रॉम हैदराबाद। इन तेलंगाना बीजेपी सिक्योर्ड 2 out of 3 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी सीट्स इंक्लूडिंग द प्रेस्टिजियस करीमनगर मेडक निजामाबाद आदिलाबाद ग्रेजुएट्स कंस्टिट्युएंसी। BJP candidate Chiranjeev Anji Reddy triumphed with a margin of 5,106 votes after the second preference count of votes. A day before BJP and Progressive Recognized Teachers Union PRTU had bagged one seat each of the two teachers' MLC seats for which elections were held. M. Komaraya of the BJP bagged the Medak, Nizamabad, Karimnagar, Adilabad teachers' MLC seat, while PRTU candidate P. Shripal Reddy won the Nalgonda, Warangal, Khammam teachers' constituency. Celebrations erupted among BJP supporters in Karimnagar, with Central Minister Bandi Sanjay Kumar and party workers gathering in a victory rally. He hailed the win as a Ramzan gift to the Congress and declared that BJP has firmly established itself as a formidable alternative in Telangana. He said the party's outreach across 42 assembly segments and 6 Lok Sabha constituencies in northern Telangana was a decisive factor in Anji Reddy's victory.
अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम की खबरें जानते हैं प्रमोद से।
जी, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 25 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have mainly clear sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 34 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 37 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 6 मार्च है। देश और दुनिया के इतिहास में 6 मार्च कई कारणों से महत्वपूर्ण है।
जी, इन 1869 ऑन दिस डे रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंदेलीव प्रेजेंटेड द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल एट अ मीटिंग ऑफ द रशियन केमिकल सोसाइटी। एंड इन 1899 ऑन दिस डे द 6th ऑफ मार्च द जर्मन कंपनी बेयर गॉट द पेटेंट ऑफ एस्पिरिन एंड नाउ द मोस्ट कॉमन ड्रग इन हाउसहोल्ड मेडिसिन कैबिनेट्स। एसिलेटिलिक एसिड was originally made from a chemical found in the bark of willow trees. In its primitive form, the active ingredient salicin was used for centuries in folk medicine, beginning in ancient Greece when Hippocrates used it to relieve pain and fever.
6 मार्च 1902 को मैड्रिड स्पेन में प्रशंसकों के एक समूह द्वारा मैड्रिड फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई। बाद में रियल मैड्रिड के नाम से जाना जाने वाला ये क्लब 20वीं सदी का सबसे सफल यूरोपीय फुटबॉल फ्रेंचाइजी बन गया। अपनी ट्रेडमार्क नीली और सफेद वर्दी के साथ मैड्रिड ने लगभग तुरंत ही स्पेन में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया।
That's right. आपको पता है मनोज, 1915 is the year that Mahatma Gandhi came from South Africa to India. And one of the first people he met was Tilak and Rabindranath Tagore. So this day on 1915, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore met for the first time at Shantiniketan. And in 1946, France recognizes Vietnam as a free state within Indochina Federation.
जी, 2009 में आज ही के दिन भारतीय वायुसेना को 3 दशक तक अपनी सेवाएं देने के बाद स्किंग विंग लड़ाकू विमान MiG-23 ने अंतिम उड़ान भरी और 2018 में आज ही के दिन कॉनराड संगमा ने भारतीय राज्य मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्य तिथि है। आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध क्रांतिकारी अंबिका चक्रवर्ती की। अंबिका चक्रवर्ती का जन्म 1892 में म्यांमा बर्मा में हुआ था। बाद में उनका परिवार चटगांव में आकर रहने लगा। अंबिका के ऊपर उस समय के क्रांतिकारियों और स्वामी विवेकानंद के विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके विचार और कार्य क्रांतिकारी थे, पर प्रकट रूप से उन्होंने कांग्रेस से भी निकट का संबंध रखा। शीघ्र ही वे क्रांतिकारियों के चटगांव समूह के नेता बन गए। अंबिका चक्रवर्ती ने बाद में अपने कुछ अन्य साथियों के साथ चटगांव को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने की योजना बनाई। इसके लिए 2 दलों का गठन किया गया। एक दल ने टेलीफोन और तार घर पर कब्जा कर लिया और दूसरे ने शस्त्रागार को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने कारतूस कहीं और छिपा कर रखे थे, अतः कब्जे में आए हथियार बेकार साबित हुए। ऐसी स्थिति में दल को पुनर्संगठित करने के इरादे से अंबिका अपने साथियों को लेकर जलालाबाद की पहाड़ियों में चले गए, पर शीघ्र ही इस पहाड़ी पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। उनके अन्य साथी तो बच निकले, किंतु पुलिस की गोली से घायल अंबिका घिसटते हुए एक गांव में पहुंचे और वहां के सहानुभूतिशील लोगों के इलाज से स्वास्थ्य लाभ करके भूमिगत हो गए।
Today is the death anniversary of Kumbalathu Parambu Ayyappan, who was born on the 21st of August 1889, but died on the 6th of March 1968, and he's better identified as Sahodaran Ayyappan. He was one of the most famous social reformers, thinker, rationalist, journalist and politician from Kerala. As a vocal follower of Sri Narayana Guru, he was associated with a number of events related to Kerala's reformation movement and was the organizer of the Mishra Bhojanam in Cherai in 1917. He founded Sahodara Sangam and the journal Sahodaran and was the founder editor of the magazine Yuktivadi.
Ji, aaj punyatithi hai Moturi Satya Narayan ki. Unka janma 2 February 1902 ko Krishna Zila, Andhra Pradesh mein hua tha. दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार आंदोलन के संगठक, हिंदी के प्रचार प्रसार विकास के युग पुरुष, गांधी दर्शन और जीवन मूल्यों के प्रतीक, हिंदी को राजभाषा घोषित कराने और उसके स्वरूप का निर्धारण कराने वाले महत्वपूर्ण सदस्यों में से वे एक थे। मोटूरी सत्यनारायण केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के संस्थापक थे।
Today is also the death anniversary of Kannan Shekar, popularly known as K. Shankar, and he was an Indian film editor, screenwriter, director and producer. He directed more than 80 films in South Indian languages, including Tamil, Malayalam, Telugu and Kannada, as well as a lot of films he directed in Hindi also. Shankar started his film career as an editor assistant at the Central Studios, Coimbatore in 1939 and later moved to Pakshi Raja Studios. He became very successful as an editor at AVM Studios before moving on to film direction. He gave blockbusters after blockbusters, and one of his famous films was Alay Mani for Shivaji Ganeshan, which was the highest grosser of that year, 1962, and went on to direct 7 Shivaji Ganeshan blockbuster films. And as I said, he was also a director in Hindi films, and he gave super hits like Rajkumar with Shammi Kapoor and Sadhna in lead roles. We have a song from that movie.
Okay.
तुमने बुगारार हम चले आए दिल हथेली पर ले आए रे
तुमने बुगारार हम चले आए जान हथेली पर ले आए रे
आज जन्म दिवस है निर्माता निर्देशक राज एन सिप्पी का। उनका जन्म 6 मार्च 1948 को मुंबई में हुआ है। उन्हें राज सिप्पी के नाम से भी जाना जाता है। वे 1980 के दशक में बहुत प्रसिद्ध थे। विनोद खन्ना के साथ इनकार, सत्यमेव जयते और महादेव, अमिताभ बच्चन के साथ सत्ते पे सत्ता, फिर मिथुन चक्रवर्ती के साथ बॉक्सर और बाजी जैसी सफल फिल्में दी। उन्होंने सत्यमेव जयते का निर्देशन किया। उन्होंने अक्षय कुमार की पहली फिल्म सौगंध और संजय दत्त जितेंद्र स्टारर थानेदार का भी निर्देशन किया। सिप्पी ने मिमोह चक्रवर्ती की पहली फिल्म जिमी का निर्देशन किया था।
जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल गाके सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, शादमानी ओ शादमानी।
Today is also the birthday of Janhvi Kapoor. She was born today in 1997 and is an Indian actress who works in Hindi and Telugu films. Born to film actress Sridevi and producer Boni Kapoor, she made her acting debut in 2018 with the romantic drama Dhadak, which was a commercial success. Her subsequent theatrical releases were commercially unsuccessful, but she received nominations for the Filmfare Award for Best Actress for playing the titular aviator in Gunjan Saxena, the Kargil girl, and a woman trapped in a freezer in Mili. In 2024, she had a brief role in the Telugu action drama Devara Part 1, which became the highest grossing film of her career. She got the Filmfare Best Actress Award for her film Mili. We have a song from that film.
तुम विराही हम विराही, तुम विराही हम विराही, हम तुम बस चलते चले, हम तुम बस चलते चले, जितने भी है रास्ते दे।
आज जन्म दिवस है मकरंद देशपांडे का। उनका जन्म 6 मार्च 1966 को दहानू महाराष्ट्र में हुआ है। वे हिंदी, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, मलयालम, तमिल सिनेमा और भारतीय थिएटर के अभिनेता, लेखक और निर्देशक हैं। उन्होंने फिल्म जंगल, सरफरोश, स्वदेश, मकड़ी सत्या, बुढ़ा होगा तेरा बाप और डरना जरूरी है जैसी फिल्मों में सहायक और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने 5 फिल्मों का निर्देशन भी किया है। थिएटर में उनके योगदान में 50 से अधिक लघु नाटक और 40 फुल लेंथ के नाटक शामिल हैं।
Today is also the birthday of Chandrahasan Srinivasan. He was Indian film producer, actor and brother of Charu Hasan and Kamala Hasan. And one of his most successful films was Raja Parvai, which won him many awards and also started his brother Kamala Hasan's career. Let's listen to a song from that film.
आज जन्म दिवस है अंकित तिवारी का। उनका जन्म 6 मार्च 1990 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ है। वे एक भारतीय संगीतकार और गायक हैं। इनके पिता का अपना एक संगीत समूह था। आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की।
जी नमस्कार।
नमस्कार।